कर्म तैसे फल दे तोरे ईश्वर। क्षणिक सुखा साठी अपुऱ्या कुणी हो तो नीती भ्रष्ट, कुणी त्यागी जीवन अपुले दुःख जगी करण्या नष्ट। देह करी जे जे काही, देह करी जे जे काही, आत्मा भोगी तो नंतर जैसे जाते कर्म तैसे जाते कर्म तैसे फल दे तोरे ईश्वर। ज्ञानी असो की अज्ञान गति एक आये जाण, मृत्युला न चुकवी कोणी कोर असो अथवा साल। जाते कर्म तैसे फल दे तोरे ईश्वर, जैसे जाते कर्म तैसे फल दे तोरे ईश्वर। मना खंत वाटून जाते शुद्ध होई अंतःकरण, जाते कर्म तैसे फल दे तोरे ईश्वर, जैसे जाते कर्म तैसे फल दे तोरे ईश्वर।
ओम शांति। एक गरीब किसान एक जमींदार के पास जाता है और अपनी दुख की कहानी सुनाता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ करो, दया करो, रहम करो। जमींदार कहता है, मैं क्या करूं, तुम बताओ। वो कहता है, मुझे जमीन का एक टुकड़ा दे दो एक साल के लिए, और एक साल के बाद ले लेना, मैं खेती करूंगा। तो जमींदार बहुत दयालु होता है, कहता है ठीक है, एक साल के लिए तुम जमीन ले लो, फसल उगाओ, जो फसल उगेगी वो तुम्हारी, और फिर जमीन मुझे वापस दे देना। तो वो बहुत खुश हो जाता है, जाता है। जमींदार यहां तक कहता है, मैं तुम्हें पांच लोग भी देता हूं, पांच आदमी खेती के लिए काम करने के लिए। जमींदार तो, किसान तो अत्यधिक खुश हो जाता है, खेत भी मिल गया और पांच सेवाधारी। वापिस आता है, खेत में काम करने लगते हैं और अच्छे तगड़े सेवाधारी होते हैं पांच। तो किसान सोचता है, जब ये पांच लोग यहां है तो मुझे आने की क्या जरूरत है, ये पांच लोग तो देख लेंगे ना जो कुछ है। तो दूसरे दिन से वो उनको समझा देता है तुमको क्या क्या करना है, और खुद घर में बैठ जाता है और घर में बैठे बैठे स्वप्न भी देखने लगता है कि धीरे धीरे अभी खेत में फसल उगेगी, इतना सारा धान्य मिलेगा, फिर मैं उसे बेचूंगा और बेचने के बाद घर बनाऊंगा, साहूकार बन जाऊंगा, फिर ऐसा तो शादी हो चुकी है। ये वो वाली कहानी नहीं है। तो घर बनाऊंगा। साहूकार की ये ऐसी तो क्या, ऐसे तो कितने खेत मैं अपने खरीद लूंगा। तो रोज स्वप्न देखने लगता है। और इधर ये पांच लोग, उसके पांच सेवाधारी, जब मालिक ही नहीं है तो अपनी मन मर्जी से काम करने लगते हैं, जैसे चाहे, जब आने आएंगे तब आएंगे, जब नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और ये किसान जाता ही नहीं है खेत में देखभाल करने, खेती का रख रखाव जो कुछ है सब लोग, वो पांच लोग ही करने लगते हैं। और फिर जब ऐसा करते करते एक साल बीत जाता है, किसान को लगता है अब मुझे जाना चाहिए, बहुत नींद हो गई, बहुत स्वप्न देख लिए। और जाकर देखता है फसल तो उगी है पर उतनी नहीं जितनी उगनी चाहिए थी, जितना खर्चा हुआ उससे कई गुना कम, घाटा ही ज्यादा हुआ है। सौदा बड़ा घाटे का था। और एक साल जब पूरा होता है, साहूकार देखने आता है कि क्या तुमने किया। किसान कहता है मुझे एक साल और दे दो। साहूकार कहता है अब नहीं दूंगा, और वो चला जाता है। और किसान फिर रोने लगता है। वो साहूकार भगवान है। और वो किसान मनुष्य है। और वो पांच लोग कर्मेंद्रिया है। अगर इन कर्मेंद्रियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उपद्रव। क्या होगा? विकर्म। क्या होगा? पाप। अगर उन पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं, यदि हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। बाप आए हैं तुम्हें गुलगुल बनाने, आज की साकार मुरली। पर कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, पतित बन जाते हैं, कुल कलंकित बन जाते हैं। क्या करते हैं? कुल को कलंकित करते हैं। बाप क्या है मंजू बहन? बाप का रूप कौन सा है? धर्मराज। ये ड्यूटी अब है उसकी। सतयुग में धर्मराज नहीं होगा, अब बाप के साथ कौन है? धर्मराज है। कुल कलंकित। क्या हम कर रहे, कैसे हमारे कर्म है? जगी जीवना से सार, ध्यावे जानूनी सत्वर। सत्वर अर्थात शीघ्र जीवन के इस सार को जान लो। क्या है सार? जैसे जैसे कर्म, जिसके जैसे कर्म तैसे फल दे तो रे ईश्वर। क्षणिक सुखा साठी अपुल्य, कुणी हो तो नीति भ्रष्ट। कुणी त्यागे जीवन अपुले, दुखी जगी करण्या नष्ट। देह करी जे जे काही, आत्मा भोगी तो नंतर। शरीर जो जो कुछ करता है, आत्मा वो सब भोगेगी। जैसे जैसे कर्म तैसे फल दे तो रे ईश्वर। ज्ञानी असो की अज्ञानी, गति आहे एक आहे जान। मृत्यु लाना सुखवी कोणी, थोर असो अथवा सान। सोड़ सोड़ माया सारी, आहे जग हे नश्वर। जैसे जैसे कर्म तैसे फल दे तो रे ईश्वर। जिसके जैसे कर्म होंगे वैसे ही उसको फल मिलेगा। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, कुल कलंकित नहीं करो। इस कुल को कलंकित नहीं करो। ये कुल कौन सा है? कौन सा कुल है? ये ईश्वरीय कुल है। कौन सा कुल है? ये ब्राह्मण कुल है। कैसा परिवार है? ये सर्वश्रेष्ठ परिवार है। कल अधर कुमारों से मुलाकात, क्या कहा बाबा ने परिवार के विषय में? क्या से क्या बनने के बाद ये श्रेष्ठ परिवार है। एक मत परिवार है, अलौकिक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। ये भाग्य है तुम्हारा कि तुम इस परिवार के हो। अब इस परिवार में रहकर कोई कुल कलंकित करे तो उसको क्या कहेंगे? कलंक का टीका लगा दे तो उसको क्या कहेंगे? पतित बनते हैं। बाप धर्मराज का रूप लेगा, बाप के साथ धर्मराज भी है। तो हमें इस परिवार को कलंकित नहीं करना है, कुल का वारिस बनना है, कुल दीपक बनना है। कैसे कुल कलंकित करते हैं पहले आप बताएंगे, फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुल कलंकित बहुत सारी बातें हैं, 36 तो हमने निकाली है, पहले आप बताएंगे फिर हम चालू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिसमें कुल कलंकित अर्थात छोटे मोटे अपराध नहीं, भारी, बड़े 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 अपराध, विकर्म वाले, पाप कर्म वाले, जिनके लिए हिंदी में करते कहते दो शब्द है, दुष्कर्म और कुकर्म। हिंदी में दो शब्द है, दुष्कर्म करना, कुकर्म करना। एक है विकर्म, विकर्म थोड़ा छोटा शब्द है, वैसे बड़ा है, पर उससे भी बड़े ये दो है, भ्रष्ट कर्म, निकृष्ट कर्म, सत्यानाश करने वाले कर्म और बर्बाद करने वाले कर्म। तो बाबा ने कहा कुल कलंकित नहीं करना है तुमको। कौन से कर्म करने हैं फिर? श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म, कुल का नाम बाला करने वाले कर्म, ऐसा कर्म कि जिससे ब्राह्मण परिवार शोभायमान हो जाए, उसकी शान बढ़ जाए दुनिया में। अगर कोई स्कूल है और उस स्कूल में ऐसा एक विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी है उस क्लास में, उसका एक विद्यार्थी जो है वो कोई ऐसा भ्रष्ट कर्म करता है और उसका नाम अखबार में आ जाता है, अखबार में उसके नाम के साथ उसके स्कूल का भी नाम आता है, तो लोग क्या सोचेंगे? ये पूरी स्कूल की स्कूल ऐसी है, ये सब लोग ऐसे ही होंगे, स्कूल के सभी भ्रष्ट होंगे। अब ऐसे स्कूल में हमारे बच्चों को एडमिशन हम क्यों देंगे? अच्छा ऐसा भी करते हैं, अच्छा एक स्कूल में तो पूरी स्कूल कलंकित हो जाती है एक की वजह से, एक की वजह से। तो कितनी बड़ी डिससर्विस हो गई है। तो ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जो कि स्कूल को कलंकित कर दे, इस परिवार को कलंकित कर दे? ये सबसे पहले है क्या, ये ब्रह्मा कुमारीज क्या है? परिवार है, तो इस परिवार कलंकित हो जाएगा। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, संस्था खराब हो जाएगी। तीसरा ये पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है। चौथा ये यज्ञ है। ये चार चीज तो मुख्य है, अभी इसके साथ और बहुत सारी चीज है। आश्रम, ये आश्रम बदनाम हो जाएगा। ये धर्मशाला है, ये हॉस्पिटल है, और यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, वो हो गया। और तीर्थ स्थान है, कोई तीर्थ स्थान, कोई किसी, अगर पता चल जाए काशी का रहने वाला, वाराणसी का रहने वाला आया है कोई साधु और वो इतना भ्रष्ट है, तो क्या सोचेंगे? शायद जहां से आया वहां सब ऐसे ही है। तो ये तीर्थ है, और ये क्या है? रूहानी संसद, डिवाइन पार्लियामेंट। और क्या है? पवित्र यज्ञ। क्या है? हम आबू की बात नहीं कर रहे, यज्ञ, ये संस्था। यज्ञ हो गया, और क्या? हाँ, गौशाला, सारी गाय ऐसी होगी और मंदिर है, और ईश्वरीय कुल है, कम्युनिटी है, डिवाइन कम्युनिटी है। तो जितने जितनी तुलना की जाए वो सब सब कलंकित होगा, और ये बहुत बड़ी डिससर्विस होगी। तो कुल कलंकित हम कैसे बनते हैं, उसकी कुछ बातें की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो है एडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस, जिसको कहते हैं अव्यभिचारी याद। किसी देहधारी में मोह हो गया, किसी देहधारी में फंस गए, किसी देहधारी के नाम रूप में फंस गए, इसको क्या कहेंगे? किसी देहधारी से आसक्ति लगाव लागत मोह हो गया। जब हमारे अंदर यह हो रहा है तो किस तरह के सूक्ष्म वाइब्रेशंस हम फैला रहे हैं। संगठित योग चालू है और उसमें हम बैठे हुए हैं और हमें कोई व्यक्ति याद आ रहा है जिसमें हमारा लगाव है, मोह है, उसकी देह याद आ रही है, देह का सौंदर्य याद आ रहा है, तो क्या कहेंगे? वातावरण दूषित होगा, कल की मुरली, तुम्हारे मस्तक की वृत्ति से वाइब्रेशंस वायुमंडल फैलेगा, तुम्हारे मस्तक के वृत्ति से, जो इस रूहानी नशे में रहेगा वो दूसरों को भी रूहानी नशा चढ़ाएगा, जो इस रूहानी नशे में रहेगा वो दूसरों को भी आकर्षित करेगा, वो खुद छत्र छाया में रहेगा, दूसरों को भी छत्र छाया का अनुभव कराएगा। और यदि कोई खुद मोह में है फंसा हुआ तो उसी के वाइब्रेशंस वैसे ही फैलेंगे। एक आधा कोई कमजोर होगा उस वाइब्रेशंस को कैच करेगा, बिना बोले बिना कुछ कहे उसके अंदर भी मोह के प्रकंपन घुसेंगे, फ्रीक्वेंसी मैच होगी और उसे भी पुराने जिनमें मोह था वो याद आ जाएंगे, जो भूल चुके थे, जिनसे कोई लगाव नहीं था, सोचेगा आज फोन करके देखता हूं फिर आजकल क्या चल रहा है, इतने सालों से कोई कांटेक्ट नहीं था, नष्ट मोह हो गए थे, अचानक याद आ गई, क्यों आई? ये किसी के वाइब्रेशंस पहुंच गए उस तक, मोह के कीटाणु, मोह के जर्म्स, मोह के वायरस, मोहना मोहना वायरस, तो मोह के वाइब्रेशंस। तो सबसे पहला है एडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस, ये भी कर्म है, इसके लिए मन को निर्मोही बनाते जाना है। किसी की याद ना हो इस संसार में, किसी देहधारी की याद नहीं, सब नश्वर है, यहां का एक ही अनश्वर है, बस उसी से प्यार है। कुमारियों से मुलाकात, एक बाप दूसरा ना कोई, इस नशे में आगे बढ़ती जा रही हो, ये स्मृति, नहीं तो कुल को कलंकित करोगे। दूसरा, यज्ञ में कोई वस्तु देना और फिर वापस, कुमार होते हैं ना सेवा केंद्र पर, इतना नशा चढ़ जाता है ज्ञान में आते हैं, ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा, टेप रिकॉर्ड वो सब लाके दिया और छह महीने के बाद जब लड़ाई हो गई, बहन जी वो थोड़ा चाहिए था दो दिन के लिए, और लेके गए और लेके गए, आए ही नहीं कभी, सामान देते, फर्नीचर देते, चीजें देते हैं और बाद में वापस ले लेते। यज्ञ में जो दे दिया वो दे दिया, अब उसको वापस लेने का संकल्प नहीं करना है, वो क्या है, विकर्म हो जाएगा, कुल को कलंकित करोगे, क्योंकि तुमने अगर किया तो ये बात छिपी तो नहीं रहेगी, फिर दूसरे को भी प्रेरणा आएगी, हमने भी तो बहुत दिया है, हमें भी तो लेना चाहिए, इसने तो ले लिया हमको, हम भी लेंगे। ये क्या बन जाएगा, विकर्म बन जाएगा, कुल को क्या करेंगे, कलंकित करेंगे। तो ऐसा कुल कलंकित, कुल कलंक का टीका हमारे सिर पर ना हो। तीसरा, कुछ भी हो वापस नहीं लेना है। तीसरा है नारद बनना, बीइंग नारद, फर्स्ट जर्नलिस्ट। क्या किया था नारद ने, आग ये लगाई थी, आग इधर से उधर, उधर की उधर, इधर की उधर, उधर की उधर, लक्ष्मी जी को जाके कहेगा वो पार्वती आपके बारे में ऐसा कह रही थी, हमने सुना है। शंकर जी को जाके बोलेगा वो विष्णु ऐसा ऐसा कह रहा था, मैंने सुना है, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर। स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट, फर्स्ट स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट, पत्रकार, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, रूमर्स फैलाना, अफवाह फैलाना, गॉसिप्स करना, ये करना बहुत बड़ा विकर्म है, बहुत बड़ा पाप है, कुल को कलंकित करना है, ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। कोई गलती करता भी है तो बाबा ने क्या कहा, कोई महारथी है गलती कर रहा है, पर उस समय वो महारथी नहीं है ना, तो उसका नाम मत लो। यहां वो जो करना है जिसको करना है कर रहा है, हमें इधर से उधर नहीं फैलाना है। तो ये नारद बनना बहुत बड़ा विकर्म है, यहां पर कुल को कलंकित करना है। और ये आदत है एक गॉसिप्स की, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, गॉसिपिंग। शकुनी अलग है, शकुनी तो छल कपट, छल कपट वो भी आगे आएगा, षड्यंत्र। ज्ञान मार्ग में क्या क्या नहीं बनना है उसकी भी एक लिस्ट है। सबसे पहला तो अगर शास्त्रों को लिया जाए, इसको बाजू में रख के, एक तो है मंत्रा। मंत्रा क्या करती है, मन खराब करती है दूसरों का। इसका इसके बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन है, तो इसके कान में जाके वरना तुम जो सोचते हो वैसा वो नहीं है, तुम अंधेरे में हो। इसकी वास्तविकता मैं तुमको बताता हूं क्या है। तो सबसे पहला है मंत्रा बनना, दूसरा है कैकई। कैकई नहीं बनना, कैकई क्या करती है, सुनी सुनी बातों पर विश्वास किया और स्वार्थ, मेरा बेटा, उसके बाद में शूर्पणखा, काम का प्रतीक है शूर्पणखा। पहले राम के पास जाती है, राम जी कहती है आई एम ऑलरेडी मैरिड, उधर जाओ, वो है लक्ष्मण, उसके पास जाती है। वो कहता है मैं तो दास हूं, तुम मेरे से शादी करोगे तो दास का जीवन बिताना पड़ेगा, मेरा मालिक वो है। वो तो डर जाती है, वापस जाओ, वापस जाती है, वापस इधर, वापस इधर। परंतु आकर्षित हुई है ना शरीर पर, वो उस स्त्री का प्रतीक है जो पुरुष में आकर्षित हुई है, शूर्पणखा। उसके बाद में शकुनी, शकुनी क्या करता है, छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट, षड्यंत्र रचते रहता है। उसके बाद में दुर्योधन, दुर्योधन किसका प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है, आज की साकार मुरली, मैंने ये किया मैंने वो किया, अहंकार आया और गया, बाप देखो कैसा निरंकारी है, अहंकार आया और गया, दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। कृष्ण कहता है कि मैं एक विकल्प और है, पांच गांव दे दो बस पांडवों को, नहीं चाहिए इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन कहता है पांच गांव, सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। भीष्म कहता है क्यों अपनी मां को अपने शव पर विलाप करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो दुर्योधन की नहीं बनना है, दुर्योधन अर्थात मैं, अहंकार। उसके बाद में रावण, रावण अर्थात अहंकार का प्रतीक, रावण अर्थात काम वासना का प्रतीक। उसके बाद में मेघनाथ, मेघनाथ किसका प्रतीक है, मेघनाथ भी अहंकार का प्रतीक है। दुशासन, दुशासन उन उस उन लोगों का प्रतीक है जो विकारों में साथ देते। कर्ण, कर्ण कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है, अच्छी बातें बहुत है परंतु संग किसका दिया, बस वो एहसान के नीचे ही दबा रहा, पर वो भी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है एक, वो भी नहीं बनना है। और उसके बाद क्या नहीं बनना है शास्त्रों में से, कुंभकर्ण क्या करता है, सोते रहता है दिन रात, वो भी पर सत्कर्म भी तो नहीं हो रहे, जो विकर्म किए हैं अतीत में वो भस्म भस्म भी तो नहीं हो रहे। धृतराष्ट्र, मोह, मोह का प्रतीक है, डर लगता है उसको, जैसे ही दुर्योधन कहता है मैं आत्महत्या कर लूंगा, एकदम पूरा उसका सिंहासन डोलने लगता है, सब उसको तुच्छ लगने लगता है, फिर न्याय और सब कुछ। फिर उसके बाद में गांधारी क्या कर ली उसने, आंखों पर जानते हुए समझते हुए पट्टी बांध ली, गांधारी भी नहीं बनना है। उसके बाद में कोपरानी, हाँ वो तो कई कई क्या हो गया ना। उसके बाद में शिशुपाल क्या किया था उसने, गालियां दी थी, गालियों पे गालियां देता रहा। उसके बाद में जयद्रथ क्या किया था उसने, षड्यंत्र जब रचा गया था तो पांडवों को घुसने ही नहीं दिया उस षड्यंत्र में, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और क्या नहीं बनना है, शांतनु मोहित हो गया, हिलने लगा, और अपने बेटे ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली और चुप बैठा रहा, पर दुखी रहा जीवन भर। और क्या नहीं बनना है, हाँ कंस जरासंध, कंस, ये सब मुरलियों में थे, पूतना, भस्मासुर, बहुत सारे उदाहरण है। तो ये सब किसके उदाहरण है, कहां के उदाहरण है, ये इस परिवार के ही है सारे, यहीं से गायन होगा उनका, यहीं पे है सारे विद्यमान। ये सारी रामायण कहां घटित हो रही है, यहीं पे। वो दिवाली में मैसेज आया था ना, दिवाली में दिवाली का एक मैसेज था ना रामायण वाला, क्या था वो सुशील भाई, आपने भेजा था। मन ही रामायण, मन हारा तो रावण, मन जीता तो राम, मन ही मन में चल रहा देवासुर संग्राम, मन ही कैकई रानी, मन ही मंथरा दासी, मैला मन न कीजिए ये तो सत्यानासी, मन ही अंगद मन बजरंगी, मन की शक्ति अपार, मन में राम तो वानर भी कर जाए लंका पार, दम भी मन का रावण मन का, जिस दिन हो संहार, विजय दशमी का ये पर उस दिन हो साकार। ये आपने भेजा था, आपको एवं आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। तो कलंकित सबसे पहला बताया अव्याभिचारी याद, व्याभिचारी याद, दूसरा बताया देना और चीजें वापस ले लेना, तीसरा बताया नारद ना बनना, चौथा बताया दैहिक दृष्टि रखना, दैहिक आकर्षण, दैहिक दृष्टि, सोल कॉन्शियस दृष्टि कैसी हो, आत्माभिमानी, देह की तरफ दृष्टि जा रही है, ये सुंदर ये असुंदर, ये काला ये गोरा, ये पतला ये मोटा, शरीर का ये कर रहे और उस अनुसार बोल भी रहे कि वो भाई ना वो मोटा वाला। पांचवा, किसी भी धर्म या आध्यात्मिक संस्था की ग्लानी करना, हमारी संस्था बहुत अच्छी है, वो संस्था एकदम फालतू है, उधर मत जाया करो, बंद करो उधर जाना, ये हमारी संस्था में आ जाओ, दूसरी संस्थाओं की ग्लानी करना, ये भी कुल को कलंकित करना है। वो मुरलियों में जो आता है वो अलग, वो बाबा है, इसके लिए किसी भी धार्मिक संस्था की या धार्मिक मतों की ग्लानी नहीं करनी है। वो तो बाबा छोटे इतने लोगों से बात करते बस, इसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी ग्लानी नहीं करनी है, उसके विरोध में नहीं बोलना है कुछ, क्योंकि हर एक, हम भी तो पहले वही करते थे, अब थोड़ा सा ज्ञान क्या मिल गया और हम सोचने लगे बस हम ही सब कुछ है, दूध का धुला कोई नहीं है यहां, सबने विकर्म कर बैठे हैं, ब्राह्मण जीवन में भी बहुत विकर्म किए। छठवा, किसी की भी निंदा करना, एक होता है धार्मिक संस्थाओं की, दूसरा छठवा किसी की भी निंदा नहीं करनी है, क्यों, क्या महावाक्य है बाबा के, बाबा के बहुत कड़े महावाक्य है इसके लिए, कौन सी मुरली है वो, कौन सी मुरली है, मुरली की डेट सुशील भाई, नहीं कौन सी है जिसमें बाबा ने ग्लानी के बारे में बताया है, हाँ वो कौन सी मुरली है जिसमें कर्म की गति बताई है और ग्लानी बताई है? हाँ जम्स, हाँ ये है 21 नवंबर 1992, इसको आज पढ़ना एक बार, 21 नवंबर 1992। कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो, अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबद से आवाज करता है, तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल आपके पास आता है। गुंबद में आवाज करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार है, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानी करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है, कौन सा, अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की ग्लानी की और कल आपकी कोई दुगुनी ग्लानी करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स, बहुत जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स किसकी ग्लानी की वहां तक पहुंचते जरूर है। आपने एक ग्लानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानी करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई, कर्म की गति क्या हुई, लौट कर कहां आई? अगर आपको शुभ भावना से उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशिष्ट निमित्त स्थान पर दे सकते हो, फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हां में हां कर दिया, बोला नहीं। आपने भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन, आपके भक्ति मार्ग में भी वर्णन है कि बुरा काम नहीं किया लेकिन देखा भी साथ दिया, तो वह पाप है। हां में हां मिलाना यह क्या है, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पापों में भागी बनना है। हाँ, तो उसके साथ हाँ हाँ करना है।
कमलेश भाई ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उस समय क्या करे, वो सुना रहा है सामने से, रो रहा है।
हाँ मैं हाँ मिलाने की बात कर रहे बाबा, वो कहेगा मेरे साथ उसने वैसा किया, हम कहेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, वो हमेशा सबके साथ ही ऐसा। अगले दिन वो आके उसकी तारीफ करने लगेगा, फिर क्या करोगे, उसका दोस्ती हो गई, उसकी दोस्ती हो गई उसके साथ जिसकी वो ग्लानी कर रहा था। जैसे आ है, बा आपके पास आया और बा आ की निंदा कर रहा था, ठीक है, फिर उसकी उसी दिन शाम को दोस्ती हो गई और आपने उसके साथ हाँ में हाँ मिला दी और उसकी बहुत ग्लानी कर दी, और फिर बा उस आ के पास जाके ये बोलने लगा कि उसने आपकी ग्लानी की थी, फिर आप फंस गए ना।
ग्लानी करने का कोई ग्लानी फिर भी
किसी के लिए अपशब्द हमारे मुंह से ना निकले, उसको भले कहने दो, हम उसको समझाते रहे कि आत्माएं हैं, परवश है, नहीं उसमें कुछ ज्यादा भी समझा दिया, उसमें कुछ ज्यादा भी बोल दिया है कि वो ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही है, ये सब एडिशन कर दिया उसमें। व्यक्तिगत मुलाकात तो छठवा है किसी का भी क्रिटिसाइज करना। उसके बाद में सातवा, ब्रह्मा भोजन का अनादर या एक्स्ट्रा लेकर फिर नहीं खाना और उसे वेस्ट करना, बहुत सारा ले लेना और उसके वेस्ट कर देना, उसका अनादर करना और दूसरों को भी सिखाना अनादर करना। वो कहता है मेरा इतना रह गया है, अरे छोड़ो ना, फेंक दो, क्या होता है, खुद तो अनादर कर ही रहे। हाँ हाँ, नहीं उसको कुछ कुछ कहना, हमारा ये करना कि ठीक है कोई नहीं फेंक दो, प्रोत्साहित करना, उसको भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है फिर अगली बार वेस्ट करने की, ये भी कलंकित करना है। उसके बाद में डिसरिगार्ड ऑफ सीनियर्स, अपने सीनियर या जूनियर का अनादर करना, हम ये ना भूले कि उसको निमित्त किसने बनाया है, वो चाहे कैसा भी हो और उसको निमित्त बनाने वाला ऊपर बैठा है। उसके बाद में इस यज्ञ की डिसर्विस करना, कैसे यज्ञ की डिसर्विस करना, कुल कलंकित करना है, कैसे डिसर्विस, इसके पहले कई बार उदाहरण दिया है हमने रमेश भाई जी का, वो उन्होंने ही सुनाया था रमेश शाह जी ने, कि दो सेंटर के लोग, एक सेवा सेंटर के लोग पहुंचे गवर्नर के ऑफिस में और कहने लगे कि शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आप हमारे पास आना। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जरूर आएंगे। दूसरे दिन दूसरे सेंटर वाले पहुंचे तो उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आप आना। उन्होंने कहा हम तो आ रहे हैं ऑलरेडी। उन्हें कहाँ आ रहे हो? तो यहाँ। अरे वहां मत जाना, वो खराब लोग है, आप हमारे पास आओ। तो ये क्या हो गई? डिससर्विस हो गई ना, ये कुल कलंकित करना है। फिर उसके बाद में योग्यता होते हुए भी सेवा ना करना, सेवा के लिए मना कर देना, नहीं ना मैं नहीं करूंगा। हमेशा मैं ही करूं क्या? वो खाली बैठा रहता है, उसको कोई बोलता ही नहीं कुछ, हमेशा मुझे ही बोला जाता है। ऐसे समय क्या करना चाहिए? उसको कोई नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है। सोचना है हमारा भाग्य ज्यादा बन रहा है, उसके भाग्य में ही नहीं है तो क्या करे। हाँ वो ज्यादा ही बन गया होगा, इसके लिए सेवाएं हमें मिल रही है। और दूसरी और एक बात, सेवा हमें मिल रही है अर्थात हमारे हिसाब किताब भी उन आत्माओं से ज्यादा है जिनकी सेवा करनी है, ये भी उसमें एक सूक्ष्म राज है। हाँ वो भी एक दूसरा पॉइंट है आगे, जो योग्य है उनको सेवा न देना, पक्षपात करना, यही इंचार्जेस के लिए है। फिर अगला है नाम मान शान के लिए सेवा करना, यज्ञ के लिए नहीं, अपना नाम मान शान के लिए। कई बार हमने देखा है जो मंच संचालक होते हैं या फिर जो परिचय देने वाले होते हैं, अब गेस्ट वो है अपना ही परिचय देते रहते हैं। परिचय देना चाहिए गेस्ट का नहीं, अपना ही परिचय देते कि मैंने क्या क्या किया। हमको याद है एक जगह हम गए थे, 40 मिनट का टाइम था तो 20 मिनट तो वो संचालक ने परिचय देने में लगा दिया, जबकि भाषण का टाइम था 40 मिनट। तो 20 मिनट में उसमें आधी महिमा तो खुद की। फिर हमने कहा आगे भी आप ही बोल दो अब। फिर उसके बाद में ड्यूअल नेचर, डबल स्टैंडर्ड, बोलना कुछ करना कुछ, खौफनाक। बहन जी को करना, हाँ हम सेवा कर लेंगे, हम 5 बजे आ जाएंगे। 5 बज रहे, 6 बज रहे, अभी तक आए नहीं। फिर फोन करो तो अरे हम तो भूल ही गए, जानबूझ के भूलते। हाँ ये डबल स्टैंडर्ड्स, अंधेरे में रखना किसी को, गेम करना, प्ले करना। एक बहन जी बता रहे थे नीचे आए थे, उनके सेवा का टर्न था और उनके कुमार ऊपर आ गए मधुबन में तपस्या करने। उधर बहन जी ढूंढ रहे कुमार कहाँ है, कुमार कहाँ है। सेवा का टर्न उनका है, भोजन का टर्न उनका है, भोजन वितरण का या भोजन की सेवा उनको दी गई है वहां के। फिर उनको बोलते अगली बार से पूरा बोल देना सेवा नहीं देंगे आप लोगों को। तो बिचारी बहन जी क्या करे, कुमार बिना बताए ऊपर आ गए रातों रात, एकोमोडेशन ले लिया और यहां पर तपस्या कर रहे हैं। अमृत वेला इधर क्लास में भी आ गए, बहन जी परेशान नीचे। तो ये सेवा है या तपस्या है या डिससर्विस? आए किस लिए थे, कर क्या रहे? कर्तव्य बुलाए सब छोड़ दो, सब कुछ, कर्तव्य फर्स्ट। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं करना है। उसके बाद में बदले का भाव, टिट फॉर टैट, उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, उसके लिए कुसंकल्प करना कि इसका बुरा हो जाए। इसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अभी देखा हो गया ना एक्सीडेंट, टूट गया ना पैर, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बाइबल में लिखा है कि आप किसी की कब्र में जा रहे हो, कोई मर गया है, फूल चढ़ाने जा रहे हो और आपके मन में बदले का भाव है उसके लिए, अच्छा हो गया मर गया। जीसस क्राइस्ट कहते हैं गो बैक, पहले ठीक करो मन को और फिर आओ, फूल लेकर फिर चढ़ाओ। बदले का भाव रखना, कुल कलंकित करना है। उसके बाद में फॉलो ब्रदर सिस्टर, यहां एक ही श्रीमत है फॉलो फादर। किसको फॉलो कर रहे हो? इसने ऐसा किया इसलिए हम कर रहे हैं। किसने बोला तुमको फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर करने को? वो कल आज ठीक चल रहा है, कल वो गड्ढे में गिर जाएगा, तुम भी गिरोगे क्या? उसके बाद में एक्सक्यूजेस देना सेवा के समय, बहानेबाजी, अभी अभी मुरली चली इससे जागो, अजीब अजीब बहाने, नए नए बहाने। बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है, वो चाहिए योग में, वो उधर क्रिएटिव माइंड है, ऐसे ऐसे बहाने जो कभी सोचे नहीं थे और ज्ञान युक्त बहाने, क्या सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता है, उसके बाद में किसी को दुख देना, यह कुल कलंकित होना है, पाप करना, किसी को दुख देना, किसी को, किसी के मन को दुखाना, टॉर्चर करना किसी को मेंटली, किसी को योग नहीं करने देना, किसी को ज्ञान नहीं करने देना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचना, कुछ तो करना उसके साथ, कंप्लेन करना झूठी झूठी, उसके बाद में किसी ऐसी आत्मा को धन देना जो उसका प्रयोग खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने वाला हो, ना कि यज्ञ सेवा के लिए। ऐसे काम में मदद करना पैसे कमाने के, कि जो पैसा यज्ञ में नहीं लगने वाला है, ऐसे व्यक्ति को मदद करना वो पैसे कमाने में, या अनैतिक ढंग से पैसे कमाना। उसके बाद है सत्य को छिपाना, पाप करना, विकर्म करना, सत्य को छिपा के रखना, यह बहुत बड़ा विकर्म है। उसके बाद में अशुद्ध व गंदे कामुक वार्तालाप, लव चैट्स, मोबाइल पर अश्लील वार्तालाप एक दूसरे के साथ, ये विकर्म की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में किसी की बुरी कंडीशन पर हंसना, कोई बेचारा किसी के साथ बुरा हो गया, किसी को निकाल दिया गया, या किसी के साथ कुछ कर दिया, डिपार्टमेंट या कुछ भी हो गया, उस पर हंसना, मिजरी, उसकी मिजरेबल कंडीशन पर, या फिर जोर जोर से हंसना, रॉयल्टी नहीं है, बाबा ने कहा तुम्हें रॉयल बनना है, कोई बाहर जाएंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे लौकिकता का व्यवहार कर रहे, ये कुल को कलंकित करना है, पूछेंगे तुम कौन सी संस्था से हो। एक हमारे बहुत अच्छे पहचान के है, वो इतनी रॉयल फैमिली की आत्मा है, हमारे टीचर थे वो मैडम, इतनी रॉयल फैमिली की, इतनी रॉयल फैमिली है वो, कि उनका एक बेटा तो उन्होंने समर्पित करा दिया एक संस्था में, सन्यासी बना दिया, जो बहुत अच्छा सन्यासी है, मतलब एक योगी आत्मा है, ऐसी मां है वो। तो उनको हमने बताया ब्रह्मा कुमारी जी वो, तो वो गए सेवा केंद्र पर वहां पर जो व्यवहार उनके साथ हुआ वो इतना रॉयल नहीं था, अपमानित तो नहीं कहेंगे पर रॉयल्टी वाला व्यवहार नहीं था, बहुत बुरा लगा उनको, हां सम्मानजनक व्यवहार नहीं था वो। तो रॉयल्टी का व्यवहार न करना ये डिससर्विस है। उसके बाद में यज्ञ का पैसा मिसयूज करना, किसी एक आत्मा ने हमसे अनुभव बताया था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, हमने कहा कौन सा पाप, वो बोले मैं किसी को बता नहीं सकता, सकती यहां का पैसा लौकिक में भेजा सेवा केंद्र का, क्योंकि वहां आर्थिक समस्याएं थी, विकर्म है। फिर उसके बाद में यज्ञ की वस्तुओं को गलत उपयोग करना, फैसिलिटीज जो मिल रही है, सामान जो मिल रहा है, चीजें जो मिल रही है, उसका गलत प्रयोग करना। उसके बाद में भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। उसके बाद में अपने कर्मेंद्रियों पर वश न होना, जो जिस कहानी में हमने बताया था। उसके बाद में श्रीमत में मनमत मिक्स करना। उसके बाद में मुरली क्लास के समय, योग के समय सोना, योग चल रहा है और हम सो रहे हैं, कौन से वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, पाप हो रहा है वहां पर, हट जाओ वहां से, कमरे में जाओ सो, या चलो, क्यों वहां क्यों बैठ रहे हो, वहां बैठ के सोते रहना, और उसके भी आगे की स्टेज खर्राटे भरते रहना। पर सब तो सो नहीं रहे ना, ऐसा कुछ होता है वहां से हट जाओ, नींद आती है तो बिल्कुल हट जाओ वहां से, पर वहां लगे रहते हैं, वो भी एक देखा, दृढ़ता से लगे रहते हैं, एकदम हटते नहीं है, अगर कोई इशारा भी दे, हाथ भी लाए तो भी नहीं हटते, कुछ तो करेंगे। हाँ, कोई मानता थोड़ी ना मैं सो रहा था, मैं तो जागा हूं, ये विकर्म है। उसके बाद में झूठ बोलना और फिर कहना ये युक्ति युक्त है, ये एक अच्छा टॉपिक है, युक्ति युक्त क्या है और झूठ क्या है, झूठ अलग है, युक्ति युक्त अलग है, हर अपने झूठ को युक्ति युक्त कहते हैं, बाबा ने कहा ना युक्ति युक्त बोलो, पर झूठ अलग है, युक्ति युक्त अलग है। उसके बाद में किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करना, कैसे, आगे पीछे घूमते रहना, उसके बड़ों के आगे पीछे घूमते रहना, उसकी महिमा करते रहना, चाटुकारिता, चापलूसी, बटरिंग, मक्खन, ये सब इसमें, फिर उसके बाद में टाइम वेस्ट करना फैशन में, साज श्रृंगार में, उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 33, वेस्टिंग टाइम, निमित्त आत्माओं का समय बर्बाद करना, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, व्यर्थ की बातें लेके जाना और उनका टाइम वेस्ट करना, दादियों का टाइम वेस्ट करना, योगी आत्माएं इस संसार की जो है उनका टाइम वेस्ट करना, व्यर्थ के मैसेजेस भेज के उनका टाइम वेस्ट करना, संकल्प चलाना उनके, हाँ बड़ों का टाइम इंपॉर्टेंट है हमको, दूसरों के टाइम का ऐसा नहीं कितने भी बजे उसके सोने का टाइम है वहां फोन कर रहे और चालू अपनी राम कहानी, मैं कुमार हूं, मैं माता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे वो कर क्या रहा है उस समय, उसकी दिनचर्या तो पता चलो करो, दिन भर सेवा करके अभी अभी आए हैं, रेस्ट कर रहे हैं और उसको अपना चालू कर रहे। हाँ टेकन फॉर ग्रांटेड, ये समझना कि ये तो 24 घंटे सेवा में है ना, ऐसा नहीं है। दूसरों के समय को समझना है, दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत बड़ा विकर्म हो जा रहा है। किसी हमारी वजह से किसी के संकल्प चल रहे हैं व्यर्थ के, तो विकर्म हो रहा है ना। उसके बाद में संगम युग का समय बर्बाद करना, अपना और दूसरों का, ये तो अपने की बात है। उसके बाद में गंदे अश्लील चित्र देखना, वो तो ब्राह्मण नहीं करेंगे परंतु हाँ खा लेते हैं खा लेते हैं, रंगीन कपड़े पहन के सिनेमा हॉल में चले जाएंगे, खा लेंगे, मधुबन में है तो व्हाइट, वहां जाते ही कलर, बैच इतनू सा ये बटन के पास, नहीं नहीं इतनू सा बटन के पास, ताकि वो दिखे भी नहीं, अगर कोई बीके मिल गए तो उसको दिखा सकते हैं बैच तो है, दोनों तरफ इधर रहे तो उधर, उधर के तो उधर, दोनों काम मुझे झूठ है, खुद को धोखा देना है। और सबसे लास्ट, मधुबन में रहते हुए पुरुषार्थ न करना, ये मधुबन निवासियों के लिए, मधुबन में रहते हुए तपस्या की लहर न फैलाना, मधुबन में रहते हुए बेहद का वैरागी न बनना, मधुबन में रहते हुए धधकता हुआ वैराग अंदर ना होना। एक सन्यासी के लिए गायन है कि वो पैसे नहीं कमाता है, वो क्या करता है दूसरों के भिक्षा से जीता है, ठीक है। संसार में जो सन्यासी होते हैं पैसे नहीं कमाते, जॉब नहीं करते, क्या करते हैं भिक्षा मांगते हैं, गृहस्थियों के भोजन से जीते हैं। अब उसके रिटर्न में उन्हें क्या देना होता है, उसके रिटर्न में उन्हें उन गृहस्थियों की आध्यात्मिक उन्नति करानी होती है, उसके रिटर्न में उन्हें तपस्या करनी है, क्योंकि वो खुद तो कमा नहीं रहे, तो पैसा तो कहीं और से आ रहा है, उसका रिटर्न है तपस्या, उसका रिटर्न है ब्रह्मचर्य, उसका रिटर्न है अपनी स्थिति को श्रेष्ठ करना, उसका रिटर्न है उन गृहस्थियों की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। अगर वो ये नहीं करता है, कोई सन्यासी है केवल खाता पीता है, गृहस्थियों का खाता है और उनकी सेवा कुछ नहीं करता है, तो क्या है बोझ। मनमोहिनी दीदी के बड़े कड़े वाक्य है, क्या राजू भाई ने बताए थे कभी, बड़े कड़े वाक्य है, बताऊं या नहीं बताऊं या छोड़ दूं जो यहां रहते हैं खाते हैं पीते हैं सेवा नहीं करते तपस्या करते, मजदूर है, मजदूर के जैसा काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं बस, मजदूर है। तो मधुबन में रहना उसको भी नीचे खींचना, नाम रखना, किसी को ग्लानी करना, मधुबन में रहना बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, सब कुछ यहां मिल रहा है, इतना बड़ा भाग्य मिल रहा है, कोई चिंता नहीं है कुछ करने की कमाने की। संसार में कितना, कुमारों को देखो संसार में, दो दो घंटा ट्रेवल करते हैं, आठ आठ घंटा जॉब करते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं और फिर तपस्या करते हैं, सेंटर पर भी सेवा करते हैं। कोई कोई कुमार तो ऐसे है मल्टीपर्पज वर्कर, साउंड को भी देखेंगे, किचन में भी देखेंगे, वो गाड़ी भी चलाएंगे और फिर बीच में से उनको कहीं और भी भेजा जाता है, झाड़ू पोछा सब सब करते हैं, सब कुछ करते हैं और अपना जॉब भी करते हैं, तो भाग्य कहां ज्यादा बन रहा है फिर। और यहां पर दो घंटे चार घंटे की सेवा कर ली बस हो गया बेरोजगार, उसके बाद अलौकिक बेरोजगारी, काम ही नहीं है, सेवा ही नहीं है। ठीक है, तो कुल कलंकित नहीं बनना है, नहीं तो बाप के साथ धर्मराज भी है। ओम शांति।